समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या है जन्मदिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनीता आनंद। अनीता, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। एंड फॉर यू ऑल वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट मुकेश।
जी हाँ, संसद के दोनों सदन लगातार 5वें दिन विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बिना किसी विशेष कामकाज के स्थगित।
नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी अनाउंसेस इंडक्शन ऑफ 96 शिप्स एंड सबमरीन्स इनटू नेवी इन द नेक्स्ट 10 इयर्स।
चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक देश के कुल कोयला उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 35% की वृद्धि दर्ज की गई।
UN Relief Agency for Palestine Refugees suspends aid operations in Gaza via Kerem Shalom Crossing following armed robberies.
मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शुरू।
In Kerala, red and orange alert issued for several districts on account of low pressure formation in the wake of cyclone Fenjal. People living in vulnerable areas directed to relocate to safer places. And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we will talk about the International Day for Abolition of Slavery and the National Pollution Control Day. The International Day for Abolition of Slavery commemorates eradication of contemporary forms of slavery. Although modern slavery is not defined in law, it is used as an umbrella term covering practices such as forced labor, debt bondage, forced marriage, and human trafficking. Essentially, it refers to situations of exploitation that a person cannot refuse or leave because of threats, violence, coercion, deception, or abuse of power. History of this day, that is the International Day for Abolition of Slavery, has been practiced in several parts of the world. The history reminds us of the tragedy, cruelty, and the unjust and inhumane practices resorted to enslaved mass populations. The most recent example of slavery in modern history is that of transatlantic slavery. The United Nations General Assembly approved the Convention of Suppression of Traffic in Persons and of Exploitation of Prostitution of Others on the 2nd of December, that is this day, in the year 1949. Then on 18th of December 2002, by passing a resolution of the UN Assembly, notified in 2004 as the international year to memorialize the struggle against slavery and its abolition.
बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार हर 8 कामगारों में लगभग एक बच्चा शामिल है। इनमें से आधे से अधिक बच्चे व्यावसायिक यौन शोषण का शिकार होते हैं। इसके अलावा जबरन श्रम के 86% मामले निजी क्षेत्र में हैं और जबरन व्यावसायिक यौन शोषण के हर 5 पीड़ितों में से लगभग 4 महिलाएं या लड़कियां शामिल हैं। इन निष्कर्षों के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जबरन श्रम को समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने के लिए नवंबर 2016 में एक कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रोटोकॉल विकसित किया। पुरानी गुलामी को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकायों ने गुलामी के पुराने रूपों को पाया है जो पारंपरिक मान्यताओं और रीति रिवाजों में अंतर्निहित हैं, जिसने गुलामी के आधुनिक रूप को जन्म दिया है। गुलामी के रूप लंबे समय से चली आ रही गुलामी का परिणाम समाज में सबसे कमजोर समूहों जैसे कि निम्न जाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक और स्वदेशी लोगों के रूप में माने जाने वाले समूहों के खिलाफ भेदभाव है। इस प्रकार इस दिन का उपयोग लोगों को उन बुरी प्रथाओं को याद दिलाने के लिए किया जाता है जो मानव तस्करी और बाल श्रम की ओर ले जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैश्वीकरण ने राष्ट्रों के बीच अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं और आर्थिक असमानताओं के विकास के लिए एक मंच प्रदान किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर श्रम और वस्तुओं के प्रवाह में वृद्धि हुई है। ये दिन गुलामी की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और दास प्रथा की सभी रूपों को प्रतिबंधित करने के लिए जागरूकता बढ़ाता है।
In India, the article, that is Article 23 of the Constitution, prohibits begar and other similar forms of forced labor and further provide that any contravention of the said prohibition shall be an offense punishable in accordance with the law. Moreover, the central government is fully committed towards eradication of the bonded labor system. India is obliged to end modern slavery by the year 2030 under the Sustainable Development Goal of ending forced labor, human trafficking, and also child labor. India has also ratified the International Labor Organization's Abolition of Forced Labor Convention and aspires to improve its rank in the Global Slavery Index.
बिल्कुल, बिल्कुल निवारक प्रयासों को गुलामी के सामाजिक आयामों को पहचानना होगा और इस तरह सार्वजनिक संवेदनशीलता और अधिकार जागरूकता, वयस्क साक्षरता, श्रमिकों को संगठित करना, आय सृजन और व्यावसायिक कौशल विकास के माध्यम से इसका समाधान करना होगा। गुलामी को समाप्त करने की रणनीतियों के लक्षणों से आगे जाकर मूल कारणों का समाधान करने की आवश्यकता है। उन कारणों की बहुमुखी और गहरी जड़ों वाली प्रकृति के लिए एक एकीकृत और दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत है।
एंड मुकेश, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। एवरी ईयर इंडिया ऑब्जर्व्स दिस डे ऑन 2nd of December टू रिमेंबर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी। दिस डे इज ऑब्जर्व टू मेक पीपल अवेयर ऑफ पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज एंड हाउ इट इफेक्ट्स आवर डेली लाइव्स। द डे हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स and fostering awareness about the dangers of environmental contamination. It also underscores the need for sustainable practices to ensure a safer, healthier planet for current and future generations. Pollution is a huge problem across the world, and around 7 million people die every year worldwide due to air pollution. Pollution is the addition of any substance such as solid, liquid or gas or any form of energy like heat, sound, etc., टू दी एनवायरमेंट। मुकेश
जी हाँ अनिता, मध्य प्रदेश के भोपाल में 1984 में 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की जो सुबह थी बड़ी ही दर्दनाक थी। जी हाँ, उस भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के एक कीटनाशक संयंत्र से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसेनेट का रिसाव हुआ था और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। 2,200 से अधिक लोग तो तुरंत मर गए थे और बाद में मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार लगभग 25,000 लोग मारे गए थे। दुनिया भर के इतिहास में भोपाल गैस त्रासदी को सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा के रूप में जाना जाता है।
वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड द थीम फॉर नेशनल पोल्यूशन डे 2024 इज क्लीन एयर ग्रीन अर्थ अ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे एवरी ईयर, येट सैडली द सिचुएशन इन द नेशनल कैपिटल इज नॉट इम्प्रूविंग। मुकेश
जी हाँ, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली शीर्ष पर है और राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण हर साल इसे गैस चैम्बर में बदल देता है। आइए इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एकजुट हों और प्रदूषण और स्वच्छता कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इसका हमारे ग्रह पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानते हैं। छोटी छोटी कार्रवाइयां बड़े बदलाव ला सकती है। पुनः उपयोग करें और रिसाइकिलिंग करें और एक बार उपयोग वाले प्लास्टिक को ना कहें। लाल बत्ती पर अपने वाहन का इंजन बंद कर दें और हानिकारक उत्सर्जन कम करें। आइए मिलकर प्रदूषण मुक्त भविष्य के लिए प्रयास करें।
जी,
और श्रोताओं, वक्त हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो इस क्रम में सबसे पहले कहां चलेंगे?
We are celebrating the Ahom Divas, also known as Chukhafa Divas. This is celebrated today, that is the 2nd of December each year, to commemorate the arrival of Chukhafa, the first king of Ahom dynasty in Assam.
Ahom amar rupohi gonaro naike Bharatare purbo dikhar khurja uthabe
Chaolung Chukhafa, a Thai prince from Mongmao near modern-day Ruili in Yunnan province of China, moved to Assam and founded the Ahom dynasty. Crossing the Patkai Mountains, Sukhapha arrived in the present-day Namrup of Assam in 1228. Over the next few years, he moved from place to place, searching for a suitable location to establish the capital of his kingdom. Finally, in 1253, he built the capital city of Chorayda. The capital of Ahom changed many times, but Chorayda remained the symbolic center of Ahom rule. Recently, the Chorayda has been declared as the World Heritage Site by UNESCO. The Ahom dynasty ruled Assam about 600 years. Since 1996, 2nd December has been celebrated in Assam as Assam Divas. Aminul Hazardar, Akashbani News, Guwahati.
Bohagote amare ai mohura hoi ghure Maghat honor hatere lokhimi adore Harat nikhai tarare hajai ai reke
और अब अनिता अपने श्रोताओं को ले चलते हैं गुजरात। जी हां, गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर पुस्तक प्रेमियों के लिए अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है।
जी, द नाइन डे लिटरी बुनांसा विच विल कंक्लूड ऑन 8th ऑफ दिसंबर इज द लार्जेस्ट एवर एडिशन ऑफ द अहमदाबाद बुक फेयर। गोइंग बियॉन्ड द शोकेसिंग ऑफ बुक्स, द अहमदाबाद बुक फेस्टिवल हैज सो मच टू ऑफर टू द रीडर्स। अ रिपोर्ट।
The air at the Sabarmati riverfront is charged with excitement as thousands of people, young and old, walk through the maze of stalls browsing through a diverse range of books. From fiction to non-fiction, from children's literature to academic text, there's something here for everyone. The festival, which is being organized by the National Book Trust of India under Ministry of Education along with Ahmedabad Municipal Corporation, is the largest ever book fair being organized in Gujarat. With 340 stalls and over 100 literary sessions and participation from more than 1,000 publications, the Ahmedabad Book Festival has something for all generations. Talking to Akashvani, Amit Kumar Singh, Manager Sales at NBT, said the festival also has a lot to offer to kids, especially the Children Film Festival. In a world dominated by mobile phones and screens, festivals like this ensure that literature and joy of reading are still alive and thriving. It's a great platform for people to connect with the books and with each other. For Parikrama, this is Aparna Khund, Akashvani News, Ahmedabad.
और अनीता, खान पान पसंद करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि नई दिल्ली में कनाट प्लेस पर बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सरस फूड फेस्टिवल जो है वो इस समय जारी है, तो लोग वहां जा सकते हैं और अपने मन पसंदीदा खाने का लुत्फ उठा सकते हैं।
यस, दिस इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टिल द 17th ऑफ दिसंबर। एज पर द मिनिस्ट्री, दिस फेस्टिवल इज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड द एम ऑफ दिस फेस्टिवल इज टू शोकेस द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड फूड।
In this festival, more than 300 dishes are being presented across 30 stalls from 25 states of the country. Visitors are coming with their families and experiencing Indian culture and flavors. At the festival, visitors have been tasting famous dishes of different states like Dal Bati Churma from Rajasthan, Hilsa from Bengal, Telangana Hyderabad's Dum Biryani, Odisha's Mughlai Chicken and Rasmalai, Litti Choka from Bihar, Dhokla from Gujarat, Sarso Ka Saag and Makki Ki Roti from Punjab, Kadi Rice from Haryana and many other delicious dishes. This festival is a great example of women's empowerment, as nearly 150 women entrepreneurs and women from self-help groups from all over the country are participating in it. These women hold expertise in making traditional dishes. Entry to Saras Food Festival is free and the festival will run from 11 a.m. to 10 p.m. For Parikarma, Akshit Vaidyan, Akashvani, Delhi.
और अनिता, श्रोताओं को ले चलते हैं पश्चिम बंगाल। जी हां, पश्चिम बंगाल में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है वो नंदन ऑडिटोरियम में 4 तारीख से शुरू होगा और ये 11 दिसंबर तक चलेगा।
सो द लास्ट मिनट प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन टू डेकोरेट द नंदन प्रेमिसेस टू वेलकम फिल्म लवर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। मोर फ्रॉम आवर कोलकाता कॉरेस्पॉन्डेंट।
With just a few days left for the 30th Kolkata International Film Festival, KIFF, preparations are in full swing. Nandan premises have received a fresh coat of paint and the venue is being decorated to welcome film lovers from across the world from 4th to 11th December 2024. Meanwhile, the guest list is being finalized with renowned lyricist Javed Akhtar and his wife, acclaimed actress Shabana Azmi, expected to attend the inauguration on December 4. Veteran actor and TMC MP Shatrughan Sinha, along with cricket legend Sourabh Ganguly, are also likely to be present at the event. Veteran actor Amitabh Bachchan has been attending KIFF since 2012, although Bachchan once requested not to invite him anymore, citing the exhaustion of his speech material. He has often attended the event with his family. There is some uncertainty about the attendance of both Bachchan and Shah Rukh Khan at this year's festival. After Bollywood superstar Salman Khan, SRK has also received a death threat, adding to security concerns that have contributed to the uncertainty about his participation. However, SRK has attended the inauguration of the Film Fest several times at Banerjee's invitation in the past. Meanwhile, the KIFF committee has announced the list of films selected for the international competition, Innovation in Moving Images, Indian Language Films, films to be screened for the coveted NETPAC Award section, Indian Short Films, Documentary Films, and Bengali Panorama. One of the most anticipated films is The Witness in the Innovation in Moving Images section. Directed by Nadir Saver and co-written with Jafar Panahi, the film premiered at the Venice Film Festival. Panahi, who is held in high regard among Kolkata's cinephiles, has been an important influence on Saver. The 30th KIFF will also celebrate the centenary of five cinema legends: Tapan Sinha, Arundhati Debi, Horishadhan Dasgupta, Marlon Brando and Marcello Mastroianni through special exhibitions. Millennium Post had earlier reported that KIFF committee plans to honor Sinha's centenary with a dedicated exhibition. This year, no Bangladeshi films will be screened at KIFF. Sushmita Mondol, Akashvani, Kolkata.
और पश्चिम बंगाल से अब चलते हैं तमिलनाडु और जानते हैं कि कावेरी नदी के तट पर क्या हो रहा है.
The rock city Tiruchirappalli's upcoming birds park on the banks of River Kaveri at cumbersome Pettai on the outskirts is likely to be thrown open to the public by mid-December, Mukesh. So we have a report on this.
Wherever there are birds, there is hope. Birds chirping around is a beautiful realization that life is incredibly good, or some of the quotes on birds. To give life to these quotes, an aviary along with the recreation park is being established under the Namakkanami scheme at a cost of 14 crore rupees on 1.63 hectares of land situated off the Trichy-Karur National Highway. With 98% of the work completed, works on flowering plants and setting up the aquarium are underway. Rare and exotic bird species including finches, macaws, cockatoos, amazing parrots, ostrich and pigeons have arrived from other states and countries. The aviary will house a diverse collection of both indigenous and exotic bird species, all presented in a protected environment. The bird enclosure will have transparent meshes facilitating ventilation and natural lighting to replicate their natural habitat. Drawing inspiration from the landscapes described in classical Tamil literature from the Sangam era, geographical themes such as Kurinji, Mullai, Marudam, Neidal and Palai, representing mountains, forests, fields, seashores and deserts, along with the artificial waterfalls, ponds and lighthouses, are being recreated within the aviary's nature trail. The facility can accommodate around 10,000 people and will have a 7D theatre for screening science documentaries and a sheltered seating place. The park will be thrown open to the public before December 14 and it is expected to attract domestic and migratory birds as a wide range of facilities is being created for the winged visitors. Shanti Ramesh for Parikrama from Akashvani, Tiruchirappalli.
And now for the latest on the sports front, over to Mukesh.
जी हाँ, हम बात करते हैं फुटबॉल की. इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल में आज जमशेदपुर फुटबॉल क्लब का सामना मोहम्मदन स्पोर्ट्स क्लब से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. कल उड़ीसा FC ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कलिंगा स्टेडियम में बेंगलुरु FC को 4-2 से हरा दिया. ये लीग में बेंगलुरु FC के खिलाफ उनकी लगातार तीसरी घरेलू जीत है. और फुटबॉल के खिलाड़ियों ने शुरुआत में अपना दबदबा बनाया और 10वीं मिनट में जेरी वामिनथिंगा ने इस इसाक वानरालू अल्तेफा की मदद से गोल किया। 27वीं मिनट में मोर्टाडा फॉल ने अहमद जाहौर के कॉर्नर पर हेडर से बढ़त दोगुनी कर दी। इसके बाद स्ट्राइकर डिएगो मोरिसियो ने दो बार गोल किए, जिसमें हाफ टाइम से पहले एक शानदार प्रयास भी शामिल था, जिससे ओडिशा को 3-0 की मजबूत बढ़त मिल गई। ओडिशा एफसी का मुकाबला 5 दिसंबर को मुंबई सिटी एफसी से होगा, जबकि बेंगलुरु एफसी का अगला मुकाबला 7 दिसंबर को केरला ब्लास्टर्स एफसी से होगा। तो ये तो हुई खेल की बात, और अब जान लेते हैं व्यापार जगत की हलचल।
जी, डोमेस्टिक बेंचमार्क इक्विटी इंडिसेस टुडे एंडेड विद गेन्स ऑफ ओवर 0.5%, ड्रिवन बाय रैली इन फार्मा, रियल्टी एंड ऑटो स्टॉक्स। द 30 शेयर बीएसई सेंसेक्स गेन्ड 445 पॉइंट्स और 0.56% to close at 80,248, and the NSE Nifty 50 advanced 145 points or 0.6% to settle at 24,276. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading down at 76,690 rupees for 10 grams, and silver 999 fine is also trading down at 90,330 per kilogram when the reports last came in. And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
आज की इस कड़ी में हम तेलंगाना क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मैरी चेन्ना रेड्डी को याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 2 दिसंबर 1996 को हुई थी। 1940 के दशक के दौरान तत्कालीन हैदराबाद राज्य में उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में भाग लिया था। वे उन दिग्गजों में भी थे जिन्होंने 1960 के दशक के अंत में तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किया था।
रेड्डी का जन्म 13 जनवरी 1919 को तत्कालीन हैदराबाद राज्य में हुआ था। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से स्नातक के बाद वे चिकित्सा सेवा में व्यस्त हो गए, लेकिन उनकी इच्छा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने की थी, इसलिए उन्होंने एक सफल चिकित्सक का पेशा छोड़ दिया और सार्वजनिक सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया।
रेड्डी आंध्र युवजन समिति और छात्र कांग्रेस के संस्थापक थे और कई छात्रों, युवाओं, सामाजिक, शैक्षिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों से भी जुड़े रहे। उन्होंने लगभग 2 वर्षों तक एक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया और विभिन्न पत्रिकाओं में लेख लिखे। 1942 में उन्हें आंध्र महासभा का महासचिव चुना गया।
रेड्डी महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के तरीकों में दृढ़ विश्वास रखते थे। स्वतंत्रता के बाद रेड्डी 2 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। अलग तेलंगाना राज्य के आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और तत्कालीन लोकप्रिय तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना प्रजा समिति के अध्यक्ष भी रहे।
वे जीवन के अंतिम समय तक जनसेवा के अपने उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध रहे। हम इस महान राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं।
हम मुंगी वीरैया और उनके साथियों को भी याद करते हैं, जो हैदराबाद के निजाम की सेना से लड़ते हुए 2 दिसंबर 1946 को शहीद हो गए थे। निजाम के सैनिकों ने किसान विद्रोहियों की तलाश में तेलंगाना के नलगोंडा के मल्ला रेड्डी गुडेम गांव पर छापा मारा था। मुंगी वीरैया 600 से अधिक ग्रामीणों के साथ इसका शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध कर रहे थे, लेकिन सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी, जिसमें वीरैया और कई अन्य किसानों की भी मृत्यु हो गई। हम इन सभी शहीदों को सलाम करते हैं।
आज हम सबसे शुरुआती उदारवादी नेताओं में से एक नारायण गणेश चंद्रावरकर को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 2 दिसंबर 1855 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के होनावर में हुआ था।
1881 में उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। चंद्रावरकर इंग्लैंड में भारत के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में 1885 में लंदन गए।
बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यों में जुट गए और 1900 में इसके वार्षिक सत्र के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से अवकाश ले लिया। 1901 में महादेव गोविंद राणा डे की मृत्यु के बाद प्रार्थना समाज का नेतृत्व उन्होंने संभाला और सामाजिक कार्यों में लग गए।
नारायण गणेश चंदावरकर ने 1914 में राजनीतिक क्षेत्र में फिर से प्रवेश किया और 1918 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और दिनशॉ वाचा के साथ अखिल भारतीय उदारवादी सम्मेलन का नेतृत्व किया।
1920 में उन्होंने जलियांवाला बाग अत्याचारों पर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गठित हंटर कमेटी की रिपोर्ट के विरोध में बॉम्बे में आयोजित जनसभा की अध्यक्षता की। चंद्रावरकर की सलाह पर ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था।
और अनीता, परिक्रमा कार्यक्रम में वक्त हुआ है उन महान हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले भारतीय सिनेमा में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता को हम याद कर रहे हैं, यानी आज उनका नाम है देवन वर्मा। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने हिंदी फिल्मों अपने शानदार हास्य अभिनय से सभी का दिल जीत लिया था। देवन वर्मा ने लगभग 149 फिल्मों में काम किया, उनमें गोलमाल, अंगूर, खट्टा मीठा, नास्तिक, रंग बिरंगी आदि उनके करियर की बड़ी फिल्मों में से एक रही हैं। बेशर्म सहित कुछ फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी उन्होंने किया। चोरी मेरा काम, चोर के घर चोर तथा अंगूर फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। तो हम एक डायलॉग उनका अंगूर फिल्म का लेकर आए हैं, वो अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
रुपए मैंने अलमारी में रखे हैं और खाली बैग यहाँ पड़ा है।
वो क्यों?
वही तो, देख अगर उस गैंग की नजर इस बैग पे है तो मौका पड़ते वो जरूर इस बैग को उठाकर भागेंगे। अब अगर वो बैग उनके पास चला भी गया तो रुपए तो इधर पड़े हैं।
यानी कि मच्छरदानी बांधिए बिस्तर पे और आप लेट जाओ चटाई पे, ताकि मच्छरों को लगे कि मच्छरदानी में है, तो मच्छर वहां चले जाएंगे।
और आज ही हिंदी सिनेमा की चरित्र अभिनेत्री प्रीति गांगुली की पुण्यतिथि है। उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में बॉलीवुड में कई भूमिकाएं निभाई थीं और उनकी फिल्मों में तुम हो ना हो, आशिक बनाया, आपने, खट्टा मीठा, तृष्णा, दिल्लगी, आहुति, अनुरोध, बालिका वधु, रानी और लाल परी, परिणय आदि बहुत सी फिल्में हैं। और प्रीति गांगुली ने 1993 में अपने पिता अशोक कुमार की अकादमी ऑफ नाटक कला के नाम पर एक अभिनय स्कूल की शुरुआत की थी।
टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बॉम्बे रेड्डी नागी रेड्डी। Born on this day in 1912, the Indian film producer-director, mainly in Telugu cinema, he set up Vijayavahini Studios in Chennai, which was then the Asia's biggest film studio. His elder brother, who was also a director, had the same initials and was known as B.N. Reddy. So Nagi Reddy was popularly known as B. Nagi Reddy. Some of the movies produced by Nagi Reddy include Patal Bhairavi, Miss Amma, Maya Bazaar, Ram Aur Shyam, Shriman Shrimati, released in 1982, and Julie, which came out in 1975, and Swarga Narg. We are playing a snippet of a song from the movie Ram and Shyam.
Aaj ki raat mere dil ki salami le le, dil ki salami le le, kal teri bazm se deewana chala jayega, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा आज की रात।
और आज ही जयंती है एक भारतीय अमरीकी वैज्ञानिक, आविष्कारक और उद्यमी शिवा अय्यदुरई की। शिवा अय्यदुरई ईमेल के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं और ईमेल के आविष्कारक, ईमेल प्रणाली का आविष्कार शिवा अय्यदुरई ने उस समय किया था जब वो केवल 14 साल के थे। और 1978 में अय्यदुरई ने कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जिसे ईमेल कहा गया।
And today is the birthday of Britney Jean Spears, the American singer, dancer, often referred to as the Princess of Pop. She's credited with influencing the revival of teen pop during the late 1990s and early 2000s. Spears has sold over 150 million records worldwide, making her one of the world's best-selling music artists. A song sung by her.
Think I did it again. I made you believe. We're more than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious.
Today is also the birthday of Boman Irani, producer, filmmaker, actor, photographer, and also the voice artist who works in Hindi films, and in addition to that, Telugu, Tamil, and Marathi films. Also, one of the most popular character actors in Hindi cinema, has featured in over 100 films. A song picturized on him.
Makhmal galo wali, mast khayalo wali, चंचल चालों वाली छुपा छुपी खेल में लगी कंचन काची कोरी नटखट नामी छोरी जबरन जोरा जोरी छुपा छुपी खेल में।
तो श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अनिता आनंद को परिक्रमा कार्यक्रम यही समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in। नमस्कार।